नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राजकीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने बताया है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनिन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप को मध्य पूर्व से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत को अन्य किफायती विकल्प तलाशने पड़े। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने किया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। श्री सिंह ने कहा कि इस दृष्टिकोण में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्वकप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है। बर्मिंघम के एडबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर ही सिमट गई। भारत का पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।